अध्याय 12 खुले आकाश में सूरज तेजी से चमक रहा था और ठंडी ताजी हवा बह रही थी। सूर्योदय होते ही मैं लाहौर से निकला और 55 किलोमीटर लंबे कच्चे एवं एक तरफा रास्ते पर चलने लगा जो गेहूं, कपास और सरसों के पीले फूलों से भरे खेतों के बीच से होकर गुजर रहा था। मैं कभी चलता तो कभी हिचहाइक करता। सड़क के किनारे और कुछ खेतों की मेड़ों पर बबूल के पेड़ बहुतायत से दिखाई दे रहे थे। इनके अतिरिक्त पेड़ बहुत कम थे, उससे भी कम था इस सड़क पर यातायात। कुछ वाहन जो यदाकदा वहां से गुजरते, मेरे लिए वे उतने ही कौतूहलजनक थे जितने उनमें बैठे लोगों के पारंपरिक वस्त्र और पगड़ियां। जर्जर ट्रक धड़धड़ाते हुए निकलते, उन सभी को बारीकी से इतने चटकीले रंगों से रंगा गया था जैसे किसी रईस रॉक स्टार की चमचमाती गाड़ी को। इक्की दुक्की बैलगाड़ियां जिनमें भूसे और गेहूं के ढेर के साथ साथ अपने मवेशी लिए पूरा का पूरा परिवार सवार रहता था, चरमराती हुई निकल जाती। ऐसे वाहनों की सवारी करते और पैदल चलते हुए मैं उत्तर भारत में प्रवेश दिलाने वाली हुसैनीवाला सीमा चौकी तक पहुंच गया। जब मैं अप्रवासी अधिकारियों के निकट पहुंचा तो मेरा हृदय आकांक्षाओं से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो यूरोप और मध्य पूर्व की यात्रा में बिताए पिछले 6 महीनों में मुझे 30 साल और वृद्ध बना दिया था। किंतु मैं जानता था कि जिन परीक्षाओं से मैं गुजरा था वे पावन भारत में मेरे प्रवेश के लिए आवश्यक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। अब मैं इतना निकट था, बस कुछ ही पग दूर। केवल एक मोटी औरत जो अप्रवासी कार्यालय में मेज के पीछे अकेली बैठी थी, मेरी नियति और मेरे बीच खड़ी थी। उसकी कठोर निगाहों में स्वागत की कोई भावना नहीं थी। बादामी रंग की सैन्य वेशभूषा में वो खुले आकाश के नीचे बैठी थी। मैं उसके सामने खड़ा था, आशा से भरा और धूल से ढका। मैंने उससे अपना पासपोर्ट थमाया। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के सिपाही उसके दोनों ओर खड़े थे, उनके कंधों से बंदूकें टंगी थी। जब वो मेरे दस्तावेज के हर पन्ने को मुआयना कर रही थी, मेरे विचार मुझे वापस क्रीट के पर्वत शिखर पर उस क्षण तक ले गए जब मुझे भारत जाने के लिए प्रेरणा मिली थी। उस पर्वत शिखर पर मेरे साथ कुछ अद्भुत घटा था। मैं जानता हूं कि कुछ लोग या तो इसे घंटों एकांत में प्रार्थना करने से उत्पन्न हुआ मनोविकार कहेंगे अथवा भूखे पेट रहने से उपजा एक दृष्टिभ्रम, किंतु मुझे अनुभव हुआ था कि भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुए थे और मैंने उनके शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना था, भारत जाओ। उस पल के पश्चात मैं ये मानने लगा था कि भगवान मुझे अपने पास भारत में बुला रहे हैं। तब से अब तक 3 महीने और 3000 मील गुजर चुके थे। मध्य पूर्व की यात्रा में हर पल ऐसा गुजरा था जिसकी कल्पना मैंने अपने बचपन में कभी ही नहीं की थी। हर गुजरते मील के साथ मेरा हृदय भारत की पावन भूमि की ओर उड़ रहा था, एक ऐसे मिलन की आकांक्षा के लिए जिसके बिना मैं जानता था कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं भारत के लिए तरस रहा था, शायद वहां मेरे हृदय की गहनतम इच्छाएं पूरी हो जाएं। मेरा हृदय और मेरी आत्मा पहले से ही योगियों के पास पर्वत शिखरों पर बने उनके आश्रम तक पहुंच चुके थे। अनेक महीनों और अकल्पनीय विपदाओं को झेलते हुए मैं उनसे पुनर्मिलन के लिए आगे बढ़ता आ रहा था। अब मैं अपने लक्ष्य से एक पग दूर उस सुरक्षा अधिकारी के सामने खड़ा था जिसने मेरा पासपोर्ट अपने सरकारी हाथों में पकड़ा हुआ था। कुछ मिनटों तक गौर से जांचने के पश्चात उसने भावशून्य चेहरे के साथ ऊपर देखा। दिखाओ तुम्हारे पास कितना पैसा है। घबराकर जब मैंने अपने कपड़े के थैले में हाथ डाला तो वो आगे झुक गई। उसे दिखाने के लिए मेरे पास चंद सिक्कों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके चेहरे पर घृणा के भाव उभर आए। प्रवेश करने के लिए तुम्हारे पास कम से कम $200 होने चाहिए। वो पीछे हटी और अपनी बाहों को छाती पर बांधकर संदेह से मुझे घूरने लगी। कहाँ है तुम्हारा पैसा? नीचे देखकर मैंने हकलाते हुए कहा, अभी तो मेरे पास इतना ही है। तो तुम अंदर नहीं आ सकते? उसने पासपोर्ट मेज पर पटक दिया। वापस अपने देश लौट जाओ। उसके शब्दों ने बाणों के समान मेरे हृदय को भेद दिया, किंतु मैं महीनों से चलकर अपनी जान पर खेलता हुआ आपके देश को देखने के लिए आया हूं। मेरे अंदर साधुओं से आपके धर्मों के विषय में सीखने की ज्वलंत उत्कंठा है। मुझे लगा मेरी याचना उस तक शायद पहुंच भी नहीं रही थी। भारत के प्रेम के लिए मैंने अपनी अमरीकी घर की सुख सुविधाओं को त्याग दिया है, कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। वो मेरी ओर घूर कर देखने लगी। भारत में पहले से ही बहुत भिखारी हैं, हमें एक और नहीं चाहिए। उसने एक सिपाही की ओर संकेत किया और उस सिपाही ने तुरंत अपनी बंदूक तान ली। तुम भारत में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम्हें अस्वीकृत किया जाता है। जहां से आए हो वहां लौट जाओ, लेकिन ये अंतिम निर्णय है और आगे इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। वो मेज से उठकर मुड़ी और पास ही स्थित छोटे छोटे बैरकों की ओर चल पड़ी। मैं उसके पीछे पीछे गया और उसके निर्णय को बदलने का अनुरोध करता रहा, लेकिन उसने मुझे फटकार दिया। उसके अंतिम निर्णय तुम भारत में प्रवेश नहीं कर सकते ने मेरे हृदय को चीर दिया था। उसके सहकर्मी, जो अब तक भावहीन प्रतीत हो रहे थे, अचानक उसके निर्णय के पश्चात मेरी ओर बंदूक तान कर मुझे बाहर निकलने का आदेश देने लगे। विचलित हो मैं कुछ दूर पीछे आया और एक बड़े नीम के पेड़ की छाया में बैठ गया। जब मैंने दूर तक फैले पंजाब के हरे भरे खेतों को देखा तो मेरा मन निराश होकर चकराने लगा। कहाँ जाऊं, क्या करूं? कितने देर तक मैं स्तब्ध हो वहां बैठा रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब पुनः मुझे अपनी परिस्थिति का भान हुआ तो मैंने निश्चय किया कि मैं वापस तो नहीं जाऊंगा। यदि वे सुरक्षाकर्मी मुझे मेरी प्रिय भूमि में प्रवेश नहीं करने देंगे तो मैं इस पेड़ की धूली में ही पड़ा रहूंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत में प्रवेश के लिए मुझे मना किया जाएगा। राजनीति से अनभिज्ञ मैं कैसे जान सकता था कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के पश्चात उस समय तीसरे युद्ध के कगार पर थे। मैं कैसे अनुमान लगा सकता था कि एक वर्ष पश्चात 1971 के दिसंबर में इसी सीमा पर जिस पर मैं खड़ा था एक रक्तरंजित युद्ध आरंभ हो जाएगा। मुझे किसी ने चेतावनी नहीं दी थी कि मैं विश्व की सर्वाधिक तनावग्रस्त सीमाओं में से एक को पार करने जा रहा था, जो कि बर्लिन के चेकपॉइंट चार्ली के पश्चात दूसरा सबसे कुख्यात स्थान है। हुसैनीवाला पर दो सेनाएं तैनात थी, एक पाकिस्तान में और दूसरी भारत में, दोनों विभाजन रेखा के आर पार एक दूसरे का सामना करने के लिए तत्पर। इन सबसे अनजान में सर्दियों की उस भरी दोपहर में पाकिस्तान की ओर वापस जाने वाले रास्ते पर बैठा था। वहां धूल भरी भूमि पर बैठकर मैं उस महिला अधिकारी को उसकी छोटी बैरक की खिड़की से चहलकदमी करते हुए देख रहा था। क्या वो मुझसे रिश्वत की अपेक्षा कर रही थी? एक युवक से जिससे के पास वो गलतफहमी में सोच रही थी कि पश्चिमी देश में जन्म और गोरी चमड़ी के कारण बहुत धन होगा? क्या वो कल्पना कर सकती थी कि मैं किन परिस्थितियों से होता हुआ इस निर्जन सीमा चौकी तक पहुंचा था? क्या मैं कभी भारत पहुंच पाऊंगा? मैं सोचने लगा, लंदन से हिचहाइक करके यहां पहुंचने पर क्या धन के अभाव में मुझे यहां से वापस भेज दिया जाएगा? ऐसा लग रहा था मानो मुझे देश निकाला दे दिया गया हो। मैं अपने सर्वप्रिय मित्र और सहयात्री गैरी के विषय में सोचने लगा। बिछड़ते समय गैरी भी देश निकाला मिले व्यक्ति जैसा दिख रहा था। कहां होगा वो अभी? क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या वो इज़राइल पहुंच पाया? मैं पंजाब की धूल में बैठा निकट हवा से लहलहाती सरसों को देखते देखते अपने मित्र के बिछोह का अनुभव कर रहा था। कुछ घंटों तक मैं बार बार पेड़ के नीचे से उठकर सीमा तक जाता, लेकिन हर बार वो महिला अधिकारी मुझे झिड़क देती। अंततः मैंने एक बार फिर से उसने याचना की। उसने अपने मिलिट्री के जूते जमीन पर पटके, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। उसने अपनी मोटी अंगुली मेरे चेहरे की ओर उठाई और गुस्से से थरथराते होठों से बोली, तुम्हारा प्रवेश रद्द किया जाता है, सुना तुमने? ये मेरी अंतिम चेतावनी है, मुझे दोबारा तंग मत करना। मैं वापस पेड़ के नीचे आ गया और पूरा दिन विचारों के तूफान में उलझा रहा। जब सूरज ढल रहा था तो मैंने देखा कि सीमा चौकी पर शिफ्ट की बदली हो रही थी। उस महिला के स्थान पर एक अधेड़ व्यक्ति आया, एक लंबा सिख थे जिन्होंने खाकी वर्दी और उसी रंग की बढ़िया पगड़ी बांधी हुई थी। महिला अधिकारी ने मेरी ओर इशारा किया, ये निश्चित करते हुए कि वो सिख अधिकारी समझ जाए कि मुझे भारत में प्रवेश नहीं देना है। फिर सेना की एक जीप उसे ले गई और कुछ रास्ता न देखकर मैं नम्रतापूर्वक नए अधिकारी के पास गया। अंतकरण से प्रार्थना करते हुए मैंने उन्हें अपना पासपोर्ट दिया और याचना की, कृपया मुझे अपने महान राष्ट्र में प्रवेश करने की अनुमति दें। उनकी आवाज़ ठंडी और उपेक्षा भरी थी। मुझे चेतावनी दी गई है कि तुम एक उपद्रवी हो, तुम्हें प्रवेश न देने के लिए मुझे कड़े निर्देश मिले हैं। अभी मुझे पर्याप्त धन दिखाओ, नहीं तो वापस चले जाओ। मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे और मैं अपने जीवन और आध्यात्मिक अभिलाषाओं का वर्णन करने लगा। मैंने भारत की आध्यात्मिक संपदा के लिए अमेरिका के ऐशो आराम को त्याग दिया है। मैंने जान पर खेलते हुए मैं लंदन से हिचहाइक करता हुआ आपकी मातृभूमि तक पहुंचा हूं। मैं भगवान को पाने का रास्ता खोज रहा हूं, कृपया मुझ पर दया कीजिए। मैं वादा करता हूं कि एक दिन भारत के लोगों के लिए कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। सच कहता हूं सर, मैं आपके लोगों की सहायता करूंगा, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। अपना पासपोर्ट लाओ। ढलते दिन के प्रकाश में उन्होंने मेरे पासपोर्ट का मुआयना किया और फिर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी व्यक्ति को अपने दिल की आवाज भी सुननी चाहिए। मुझे तुम्हारे शब्दों पर विश्वास है। मेज पर झुककर उन्होंने मोहर को लकड़ी के हत्थे से उठाया, फिर रबर के अक्षरों को स्याही के पेड़ पर दबाया और एक धप के साथ भारत में मेरे प्रवेश को वैध करार दिया। तुम्हारा काम हो गया, उन्होंने कहा और पासपोर्ट बंद करके मुझे थमा दिया। एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, भगवान करे तुम्हें उस सत्य की प्राप्ति हो जिसके लिए तुम लालायित हो। भारत में तुम्हारा स्वागत है। यहां पे 12वां अध्याय और पहला खंड समाप्त होता है।